एहेस्केल अध्याय 5। अब चौथा उदाहरण देखिए, एहेस्केल अध्याय 5 पद 1। और हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाई के उस्तरे के काम में लाकर अपने लिए सिर और दाढ़ी के बाल मूंड डाल। सिर और दाढ़ी मुड़ाकर वो देखने लायक ही होगा और निश्चय ही लोगों ने उसे देखा होगा। एहेस्केल अध्याय 5 पद 1 से लेकर 5 तक। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर, जब नगर के घिरने के दिन पूरे हो तब नगर के भीतर एक तिहाई आग में डालकर जलाना और एक तिहाई लेकर चारों ओर तलवार से मारना और एक तिहाई को पवन में उड़ाना और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलूंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े के छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाएं। तब उसी में से एक लौ भड़काकर इसराइल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसा ही है। मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वो चारों ओर देशों से घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की। उन्होंने परमेश्वर के न्याय को और व्यवस्था को दुष्टता में बदल दिया। जहां भी कानून दुराचार के साथ देता है, वहां परमेश्वर का दंड अवश्य आता है। परमेश्वर का न्याय हमारे देश पर भी इसराइलियों के न्याय के समान आएगा। एहेस्केल अध्याय 5 पद 6 से लेकर 9 तक। और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और ना मेरी विधियों पर चलते, ना मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी ना किया, इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूं और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूंगा और तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसा ना अब तक किया है और ना भविष्य में फिर करूंगा। मैं तेरे बीच ऐसा करूंगा जैसे ना अब तक किया है और ना फिर करूंगा, जो घृणित कामों के कारण होगा। एहेस्केल अध्याय 5 पद 10। सो तेरे बीच लड़के वाले अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने लड़के वालों का मांस खाएंगे, वे एक दूसरे को ही मारकर खाएंगे। एहेस्केल अध्याय 5 पद 10 से लेकर 12 तक। और मैं तुझको दंड दूंगा और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तितर बितर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों में अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि ना करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता ना करूंगा। तेरी एक तिहाई तो वो बालों को तीन भागों में विभाजित करके एक भाग जला देता है। एहेस्केल अध्याय 5 पद 12। एक तिहाई तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। इससे पूर्व कि बाबुल यरूशलेम पर कब्जा करे, नागरिकों का एक तिहाई भाग भूख और महामारी से नाश हो जाएंगे। एहेस्केल अध्याय 5 पद 12 के अंत में लिखा है, एक तिहाई तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी और एक तिहाई को मैं चारों ओर तितर बितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलूंगा। बाबुल की सेना एक तिहाई जनता को मौत के घाट उतार देगी, एक तिहाई तितर बितर किए जाएंगे, परंतु परमेश्वर उनके पीछे तलवार लेकर दौड़ता रहेगा और वे भी नष्ट होंगे। परंतु परमेश्वर कुछ लोगों को बचाकर रखेगा जिन्हें वो फिर से देश में बसाएगा। एहेस्केल अध्याय 5 पद 13 और 14। इस प्रकार से मेरा कोप शांत होगा और अपनी जल जलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊंगा, और जब मैं अपनी जल जलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुका तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर ये कहा है, और मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब बटोइयों को देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नाम धराई करूंगा। यहोवा का वचन जो यरूशलेम के विरुद्ध आया। एहेस्केल अध्याय 5 पद 15। सो जब मैं तुझको कोप और जल जलाहट और रिस वाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नाम धराई, टट्ठा, शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने ये कहा है। अतः उन पर आने वाला परमेश्वर का दंड इन राष्ट्रों को सबक सिखाने के लिए है। वे परमेश्वर के काम को देखकर स्तब्ध है। एहेस्केल अध्याय 5 पद 16 और 17। ये उस समय होगा जब मैं उन लोगों को नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, और मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निस्संतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। मुझ यहोवा ने ये कहा है। परमेश्वर आने वाले दंड के बारे में कहता है और इसराइल को चेतावनी देता है। मत सोचो कि यरूशलेम विजयी होगा और तुम शीघ्र स्वतंत्र किए जाओगे। परमेश्वर का न्याय पूरा नहीं हुआ है। वो यरूशलेम का सत्यानाश करेगा। वहां बचे हुओं में से एक तिहाई अकाल से, एक तिहाई तलवार से, और एक तिहाई जो वहां से भाग निकलेंगे वे भी तलवार से नाश किए जाएंगे, क्योंकि वहां भी तलवार उनका पीछा करेगी। अगले अध्याय में वो इसराइल के पर्वतों के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। अध्याय 34 में भी पहाड़ी भविष्यवाणी है, परंतु वो इसराइल के पुनर्स्थापना से संबंधित है। विनाश तो होगा ही, परंतु विनाश के बाद समय आने पर परमेश्वर उनका पुनरुद्धार भी करेगा। हम उसी युग में हैं जब परमेश्वर ने इसराइल के पुनरुद्धार के काम आरंभ कर दिया है। आप अध्याय 34 में देखेंगे कि परमेश्वर क्या करेगा। उसने पर्वतों को श्राप दिया था क्योंकि पर्वतों पर ही देवी देवताओं की वेदियां बनाई गई थी। वे उजाड़ हो जाएंगे और सदियों और सहस्राब्दियों तक वास्तव में उजाड़ पड़े रहे। अध्याय 34 में उन पर्वतों की ही भविष्यवाणी है। वहां फिर से पेड़ और दाख की बारियां होगी। आज आप यदि इसराइल देश में जाएं तो आप इस भविष्यवाणी को पूरा होते देख सकते हैं। परमेश्वर ने इसराइल के पुनर्वास का काम आरंभ कर दिया है। एहेस्केल की पुस्तक में रुचि का कारण यह है कि वो परमेश्वर के दंड का विवरण देती है और साथ ही साथ पुनरुद्धार की भविष्यवाणी जो आज हो रहा है। इस प्रकार एहेस्केल की पुस्तक बीते हुए इतिहास से चलकर आज की घटनाओं तक आती है, तदोपरांत वो हमसे आगे भविष्य में चली जाती है। आपको इसका अध्ययन बेहद मनमोहक लगेगा। पिता, हम तेरे वचन के लिए तेरे आभारी हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचन को अपनाएं, कि वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। अब हे प्रभु, हम तेरी आज्ञा के अनुसार तेरे वचन का प्रचार करने में सामर्थ होंगे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। आप आत्मा के पीछे चलें, उसमें जीवन व्यतीत करें तथा उससे भर जाएं, क्योंकि जितने भी परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन में रहते हैं वे परमेश्वर की संतान है। अतः मनुष्य अपना आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि यदि हम अपना स्वयं का न्याय करते हैं तो परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा। मैं आपसे प्रभु के नाम में कहता हूं कि यदि आप शारीरिक लालसाओं का जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें लिप्त रहते हैं तो परमेश्वर आपका निश्चय ही न्याय करेगा। ऐसा शारीरिक लालसाओं का जीवन आपका नाश कर देगा। आपको आत्मा का जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें और आपकी सहायता करें, यीशु के नाम में।